आस्तिक अरुणिमा के पैरों के पास बैठा हुआ था और उसने अरुणिमा के पैरों की उंगलियों को छू रखा था, जिस उंगली में अरुणिमा ने बिछिया पहन रखी थी। आस्तिक ने इस उंगली को अपने हाथ की उंगलियों से छुआ था। अरुणिमा एकदम से सहम गई थी। वो एकदम हैरान नजरों से आस्तिक को देख रही थी। उसने अपने पैर पीछे करने चाहे, लेकिन आस्तिक ने उसके पैरों को कस के पकड़ लिया और अरुणिमा को देखने लगा। उसके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में एक निराशा थी। उसने अरुणिमा को देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी अरुणिमा, आस्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अरुणिमा घबरा गई। वो अपने पैर पीछे करते हुए कहती है, आस्तिक प्लीज मेरे पैर छोड़ो, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आस्तिक ने उसके पैर नहीं छोड़े और उसे कहा, नहीं प्लीज मुझे बोलने दो, अगर आज नहीं बोला तो शायद फिर कभी नहीं बोल पाऊंगा। आस्तिक की विनती भरी आंखें अरुणिमा के ऊपर थीं। उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ किया और सामने की तरफ उसने अरुणिमा को देखते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों ने एक नमी सी थी। उसने अरुणिमा को देखकर एक उदासी भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है और इस बात का मुझे एहसास है। मुझे पता है कि हमारी शादी एक मजबूरी थी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ इस तरीके से पेश नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है मैं सो नहीं पाता हूँ जब मैं ये याद करता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गुजारे एक साल में क्या क्या किया है। तुम्हारे दर्द, तुम्हारी आँखें, तुम्हारी तकलीफ़ें अब मुझे रातों में बेचैन करती हैं और मेरा सीना भारी हो जाता है ये महसूस करते हुए कि मैंने तुम्हें इस एक साल में कितना तड़पाया है। अरुणिमा एकदम से हैरान हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें एकदम हैरानी से आस्तिक को देख रही थीं। आस्तिक रायचंद, द ग्रेट बिजनेसमैन और दुनिया की नज़र में बीस्ट के नाम से जाना जाने वाला ये इंसान अरुणिमा के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है और अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए वो उसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। अरुणिमा की आंखों में हल्की नमी आ जाती है और वो आस्तिक को देखने लगती है। लेकिन आस्तिक ने आगे कहना जारी रखा, मुझे माफ़ कर दो अरुणिमा, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है उन सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि वो इतनी सारी गलतियां हैं कि मैं एक एक करके उन्हें गिन भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उन सब के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अरुणिमा की आंखों में आंसू थे और आस्तिक की आंखों में भी नमी थी। अरुणिमा ने अपने आंसुओं को जब्त करते हुए आस्तिक से कहा, आस्तिक प्लीज़ उठो वहाँ से, जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भूल चुकी हूँ और तुम भी भूल जाओ। मैं वैसे भी अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए इन सब बातों को याद रखकर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आस्तिक ने धीरे से कहा, नहीं मैं नहीं भूल सकता हूँ, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर दोगी मेरे ज़मीर मुझे सोने नहीं देंगे। शादी के एक साल तक जो मैंने तुम्हें दुख दिया है मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। मुझे पता है कि हम दोनों पहले से ही शादी में नहीं रहना चाहते थे, यहाँ तक कि हम दोनों तो ये शादी करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे तुम्हारी सिचुएशन भी समझनी चाहिए थी। अगर मैं मजबूर था तो तुम भी बहुत खुश नहीं थी इस शादी से, और उसके बाद जो मेरे डैड ने मेरे सामने शर्त रखी उसके बाद तो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी और ज़्यादा नर्क बना दी थी। मुझे अपने हर गुनाहों की माफ़ी चाहिए। मुझे पता है माफ़ी बहुत छोटा शब्द है, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए बस यही मांग सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ और ना ही तुमसे दूर रहकर खुद को सज़ा दे सकता हूँ। ये मेरे लिए मर जाने के बराबर होगा, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। अरुणिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो आस्तिक को देखने लगती है। उसने धीरे से आस्तिक के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे नीचे किया। उसने आस्तिक के गालों को अपने दोनों हाथों में भरा और आगे बढ़कर उसने आस्तिक के माथे को चूम लिया। आस्तिक की आंखें बंद हो जाती हैं और आंसुओं की बूंद उसके गालों पर आ जाती है। अरुणिमा के आंसू भी उसके गालों से बहते हुए आस्तिक के आंसुओं से मिलकर नीचे ज़मीन को छू जाते हैं। ये वो एहसास था जो दोनों ने शायद आज पहली बार महसूस किया था। आस्तिक को एहसास हो चुका था कि उसने अरुणिमा के साथ गलत किया था और उसे अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि माफ़ी जैसा शब्द उसके लिए बहुत छोटा था, लेकिन वो अरुणिमा से दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सिर्फ अरुणिमा से माफ़ी मांगी और अरुणिमा ने भी अपना दिल बड़ा रखते हुए आस्तिक को माफ़ कर दिया था। हालांकि उसने मुँह से कुछ नहीं कहा था, लेकिन जो प्यार वो आस्तिक को दिखा रही थी आस्तिक ने उसे हंसकर स्वीकार कर लिया। अरुणिमा ने आस्तिक के माथे से अपने होंठ उठाए और धीरे से उसकी एक आंख पर रख दिए और फिर उसने भी आस्तिक की दूसरी आंख को चूम लिया। धीरे से उसने आस्तिक के दोनों गालों को चूम लिया और फिर धीरे से उसकी नाक को चूम लिया। आस्तिक उसके एहसास को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था और जब अरुणिमा ने धीरे से आस्तिक के होंठों के पास अपने होंठ ले गई तो आस्तिक के हाथों की उंगलियां एकदम से सिहर जाती हैं। ये पहली बार था जब अरुणिमा कुछ ऐसा कर रही थी। उसे लगा नहीं था अरुणिमा ये भी करेगी, लेकिन अगले ही पल अरुणिमा ने आगे बढ़कर आस्तिक के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और वो आस्तिक को किस करने लगी। थोड़ी देर तक तो आस्तिक ने अरुणिमा के होठों के एहसास को महसूस किया और फिर वो उसके होठों को अपने होठों में कैद करके उसे भी किस करने लगता है। जहां अरुणिमा की किस सॉफ्ट और प्यार से भरी थी, तो वहीं आस्तिक के किस में प्यार के साथ साथ इंटेंसिटी भी आ गई थी। आस्तिक ने अरुणिमा के गर्दन पर अपने दोनों हाथों से पकड़ बनाई और उसके होठों को डीपली किस करने लगा। अरुणिमा के गाल लाल हो गए। वो आस्तिक की इंटेंसिटी को समझ रही थी और आस्तिक उसे और ज्यादा डीपली किस करने लगता है। आस्तिक ने अरुणिमा को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उन दोनों की सांसें ही बेदम नहीं हो गई। उसके बाद उसने अरुणिमा को सांस लेने का टाइम दिया। अरुणिमा और आस्तिक एक दूसरे को अपनी इंटेंस भरी निगाहों से देख रहे थे। आस्तिक खड़ा होता है और अरुणिमा को भी खड़ा करता है। अगले ही पल वो अरुणिमा को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर क्रूज पर बने हुए अपने प्राइवेट रूम में चला जाता है। अरुणिमा ने देखा, ये बहुत ही खूबसूरत सा कमरा है, जहां पर एक बड़ा सा बेड रखा हुआ है और सामने एक कांच का बड़ा सा विंडो बना है जो सामने समुद्र का बहुत खूबसूरत नजारा दिखा रहा है। इस हल्की मंद मंद रोशनी में उसे कमरे की खूबसूरती और ज्यादा मदहोश कर रही थी। आस्तिक ने अरुणिमा को बेड पर रखा और धीरे से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और अरुणिमा की आंखें आस्तिक के उस चौड़े सीने पर जाती हैं जहां पर कई जगह कट के निशान हैं। लेकिन जब आस्तिक ने अपनी शर्ट को उतार दिया तो अरुणिमा ने कुछ ऐसा देखा जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो एकदम से उठकर बैठ जाती है और आस्तिक के सीने पर हाथ रख लेती है। आस्तिक ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ की कलाई को पकड़ा और अपने सीने पर दबाते हुए कहा, जब दिल में तुम्हारा नाम लिखा है तो शरीर पर होना भी जरूरी है, ताकि जब जब मेरी धड़कन धड़के मुझे तुम्हारे होने का एहसास हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकूं, अंदर से ही नहीं बाहर से भी।
अरुणिमा एकदम से हैरान हो जाती है। आस्तिक ने अरुणिमा के नाम को अपने सीने पर, जहां दिल होता है ठीक उसके ऊपर, बहुत सुंदर दिल के आकार में बनवाकर लिखवाया था और अरुणिमा का नाम ऐसे लिखा था जैसे कि वो उसे नाम के साथ खुद को महसूस कर रही हो। उसने धीरे से अपने नाम को छुआ और आस्तिक को देखते हुए कहा, दर्द हुआ होगा। आस्तिक मुस्कुरा जाता है और ना में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था। जो दर्द मैंने तुम्हें दिया था, उस दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं था। और जब मैं तुम्हारा नाम का टैटू करवा रहा था तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सामने तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। उसके बाद तो दर्द का एहसास भी नहीं था। अरुणिमा ने एकदम से आस्तिक के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके सीने से लग गई। आस्तिक ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। आस्तिक अरुणिमा को अपनी बाहों में भरते हुए उसके सर को सहलाता है और धीरे से उसके गर्दन पर अपने नाक को रगड़ते हुए कहा, आई लव यू अरुणिमा, आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरुणिमा आस्तिक की बाहों से अलग होती है और उसके कंधे को थामते हुए उसने आस्तिक की आंखों में देखा। उसकी एक नज़र आस्तिक के सीने पर अपने नाम पर जाती है और उसके बाद उसने आस्तिक की आंखों में फिर से देखते हुए कहा, आस्तिक मुझे प्यार करो, मुझे अभी इसी वक्त तुम्हारा प्यार चाहिए, वो भी ऐसे जैसे कि पहले कभी नहीं किया हो। आस्तिक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने हाँ में सर हिलाया और धीरे से अरुणिमा को बेड पर ऊपर लिटा देता है। वो धीरे धीरे अरुणिमा के ऊपर आता है और उसके गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। अरुणिमा आस्तिक के एहसासों को महसूस करने लगती है और आस्तिक ने अपने सीने में उमड़ रहे अरुणिमा के लिए बेशुमार प्यार को जाहिर करना शुरू कर दिया।